समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मांगने की नहीं, हासिल करने की चीज है। जब आजाद हिंद फौज खड़ी होती है तो वो ग्रेनाइट की दीवार की तरह होती है। जब आजाद हिंद फौज मार्च करती है तो वो स्टीमर की तरह होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस पर उनकी इन पंक्तियों को स्मरण करते हुए सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना अर्कल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
हेलो मनोज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 22nd of January 2025। So let's begin with the headlines, Manoj.
जी नीना, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान 15,70,000 करोड़ रुपए के 54 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लगभग 16,000 अवसर सृजित होने की संभावना है। इनमें से एक समझौता MSN होल्डिंग्स लिमिटेड से जुड़ा है, जो लिथियम बैटरी परियोजना के लिए है। एक अन्य प्रमुख समझौता रिलायंस समूह के साथ हुआ है, जो ग्रीन हाइड्रोजन डेटा सेंटर और जैव ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों के लिए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 खरब का बनाने का है।
The Parakram Divas 2025 will be celebrated today to honor the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose on the occasion of his 128th birth anniversary. The three-day celebration is being organized by the Ministry of Culture and will be held in Cuttack, Odisha, which is the birthplace of Netaji.
Dignitaries will pay homage to Netaji and hoist the national flag at the house where Netaji was born, which has now been converted to a museum dedicated in the memory of Subhash Chandra Bose. The Parakram Divas celebration at Barabati Fort will begin with a video message by Prime Minister Narendra Modi and will feature a book, photo and archival exhibition focused on Netaji's life, showcasing rare photographs, letters and documents from his remarkable journey. A sculpture photoshop and a painting competition cum workshop are also being planned on the occasion. The event will also feature cultural performances honoring Netaji's legacy and highlighting the rich cultural tradition of Odisha. Films on Netaji's life will also be screened during the event. Adarsh for Akashvani News, Delhi.
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता जानने के लिए नया चैटबॉट जारी किया गया है। इसमें 3 नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं। इस चैटबॉट का उद्देश्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है।
एआई आधारित चैटबॉट का उपयोग करने से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट और अस्पतालों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह न केवल तीर्थयात्रियों को महाकुंभ की पूरी मैपिंग प्रदान करेगा, बल्कि आसान नेविगेशन के लिए गूगल मैप लिंक के साथ प्रत्येक क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि एआई चैटबॉट तीर्थयात्रियों को पार्किंग, परिवहन, बैंकिंग, वाटर, एटीएम और अन्य सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पल भर में देने में सक्षम बन रहा है। चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से रियल टाइम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की भी सुविधा देता है। केवल 1 QR कोड को स्कैन करके श्रद्धालु अपने मोबाइल पर सीधे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
The 10th anniversary of Beti Bachao Beti Padhao scheme has been celebrated yesterday. The Union Cabinet Minister Jagat Prakash Nadda addressed an event in New Delhi on the occasion and launched the Mission Vatsalya Portal, Mission Shakti Portal and the Mission Shakti Mobile App. In his special address, highlighting the milestone of completion of 10 years of the scheme, Mr. Nadda said success of Beti Bachao, Beti Padhao scheme lies in the policy shift to mainstream empowerment of women through a holistic whole-of-government approach. He said, India has now moved ahead from women's development to women-led development. In an exclusive conversation with Akashvani, Sunil Jaglan said, Prime Minister's deep interest in initiative like Selfie with Daughter has provided it great success.
सेल्फी विद डॉटर मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अभियान रहा है। सेल्फी विद डॉटर के अंदर सच्ची आजादी की मुस्कान और जो उनके जन्म के बाद पहली किलकारी के बाद मुस्कान फैमिली को देनी चाहिए और वो कहीं न कहीं बहुतों की जो छूट गई थी वो सेल्फी विद डॉटर के द्वारा प्रदर्शित हुई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे गाँव में हमने इस कैंपेन को लॉन्च किया और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसको मेंशन किया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कैंपेन बन गया।
महाराष्ट्र में जलगांव जिले के पचोरा तालुका में हुई रेल दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 10 वर्ष का एक लड़का शामिल है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब ये यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस से टकरा गए। जलगांव के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दुर्घटना में 14 लोग घायल हुए हैं, हालांकि उनमें से किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने और घायलों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने अधिकारियों से पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
The CBI has filed an appeal before the Calcutta High Court seeking death sentence for Sanjay Roy, who has been sentenced to life imprisonment by Sialda Court in R.G. Kar Medical College rape and murder case. A sessions court in Kolkata Sialda had sentenced prime accused Sanjay Roy to life imprisonment on Monday.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों की संख्या में पिछले वर्ष नवंबर में 14,63,000 सदस्यों की वृद्धि हुई। इनमें 18 से 25 वर्ष तक के नए सदस्यों की संख्या 4,81,000 है। नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 2,40,000 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के कारण हुई है।
Now news from Hockey India League.
In a vital Women's Hockey India League game in Ranchi yesterday, the Shrachi Rar Bengal Tigers stayed in the hunt for a spot in the final by dismantling the struggling Delhi SG Pipers 2-0 courtesy of brace by Irish forward Catherine Mullen. Bengal now have 7 points from 5 games and need a huge win over Surma in their final match to have a shot at making the final. Delhi SG Pipers' hapless run in the men's segment also continued despite a spirited display against the Surma Hockey Club going down 2-1. With 14 points from 8 games, Surma are third as of now. Today in the Women's League, Odisha Warriors will face the Delhi SG Pipers, while men's action will continue with a match between the Tamil Nadu Dragons and Hyderabad Tufans. This is Sharia Chaudhary reporting for Akashvani.
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अभी तक 475 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 255 गैर लाइसेंसी हथियार और 332 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 40,000 से अधिक लीटर शराब, 20 करोड़ रुपए के लगभग 107 किलोग्राम मादक पदार्थ और 4 करोड़ 20 लाख से अधिक की नकदी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी से अभी तक 16,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर तथा आबकारी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा राजधानी के विभिन्न हिस्सों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
नाउ वी मूव ऑन टू आवर मेट्रो न्यूज मनोज। आई विल स्टार्ट विद हैदराबाद न्यूज।
ओके।
द तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद सन पेट्रोकेमिकल्स टू डेवलप 3 पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागर, कुरनूल, मंचेरियल एंड मुलुगु। These projects will have a combined capacity of 3,400 megawatt and will be complemented by downstream integrated solar power plants with a capacity of 5,440 megawatts. The MOU was signed at the World Economic Forum in Davos. An official release stated that these projects will be established with an estimated investment of 45,500 crore rupees and expected to create over 7,000 jobs during the construction phase.
दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन होगा। इसको लेकर यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। फुल ड्रेस रिहर्सल आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। यातायात पुलिस ने बताया कि परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने जाम से बचने के लिए लोगों से इन मार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। ऐसे में दिल्ली में भारी वाहनों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस रिहर्सल के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी।
नाउ मनोज, मूविंग ओवर टू बेंगलुरु। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR near Bengaluru organized a national conference on seed chain management in the eastern and northeastern hill regions. During the 2 days conference that concluded, the researchers, policy makers and other stakeholders discussed causes of low seed quality, fragmented supply chains and inadequate infrastructure in the northeastern region of the country. Series of solutions were put forth to address the concerns. It was suggested to leverage biodiversity, integrate genetic diversity, adopt advanced technologies like molecular markers, nano and blockchain technologies to enhance seed quality and agri-productivity. It was suggested to encourage public-private partnership and institutional linkages to empower farmers.
अब महाराष्ट्र मुंबई का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार मुंबई के KEM अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष्मान शताब्दी टावर बनाने की योजना बना रही है ताकि ये अधिक रोगियों को समायोजित कर सके और शीर्ष स्तर की चिकित्सा सेवा प्रदान करना जारी रख सके। बुधवार को अस्पताल के शताब्दी समारोह में श्री शिंदे ने रोगियों की देखभाल के लिए KEM की अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बात की। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को उनकी अथक सेवा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनके समर्पण ने अनगिनत लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। KEM अस्पताल की समृद्ध विरासत को लेकर श्री शिंदे ने बताया कि भारत में पहली हृदय शल्य चिकित्सा 1968 में यहां की गई थी। इसके अलावा 2024 में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण और 1987 में देश के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन विश्व बंग वाणिज्य सम्मेलन 5 और 6 फरवरी को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार इसे सफल बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। सम्मेलन का आयोजन विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर और विश्व बांग्ला मेला स्थल पर किया जाएगा। दूसरी ओर 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में शुरू होगा। पुस्तक मेला 9 फरवरी तक चलेगा। इस साल थीम देश जर्मनी है। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे तथा हल्की वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु के मौसम का हाल नीना से सुनिए।
मनोज, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist would occur in early morning. The minimum temperature was 14 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and the maximum of 32 degrees Celsius.
अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जिक्र का। आज 23 जनवरी है। आज ही के दिन 1793 में ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन हुआ था।
इन 1909 न्यू डायरेक्ट 7000 माइल टेलीग्राफिक लिंक विद इंडिया इज हेल्ड एज अ ग्रेट अचीवमेंट एट लंदन।
आज ही के दिन 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के अपराधी के रूप में जर्मनी के विलियम द्वितीय को मित्र देशों के हवाले करने से हॉलैंड ने इनकार किया।
In 1920, air transportation began in India by two Royal Air Force planes between Karachi and Mumbai, and air mail service started.
1924 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुई लेनिन की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा की।
In 1954, Bakshi Ghulam Mohammad declares that the state of Kashmir is a part of India.
1965 में आज ही के दिन दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने काम करना शुरू किया।
In 1961, Supreme Court rules cities and states have right to censor films.
1966 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी।
In 1976, Gautam Buddha's lost city of Kapilavastu was found in an excavation.
2006 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूर किया।
In 1992, India becomes ASEAN dialogue partner.
2007 में आज ही के दिन भारत और रूस के बीच मध्यम आकार के बहुउद्देशीय परिवहन विमान के उत्पादन हेतु एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
In 1978, Sweden became the first country to ban aerosol sprays linked to damage to the Earth's ozone layer.
2009 में आज ही के दिन फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया।
In 1996, the first version of the Java computer programming language was released. And in 2020, China locks down the 9 million populated city of Wuhan, the epicenter of the COVID-19 pandemic.
2020 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने को कहा। और अब बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिनकी आज जयंती है या पुण्यतिथि है या फिर जन्म दिवस है।
टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ टेरी एलन कैथ। ही वॉज एन अमेरिकन गिटारिस्ट एंड सिंगर बेस्ट नोन एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द रॉक बैंड शिकागो। ही प्लेड लीड गिटार एंड सैंग लीड वोकल्स ऑन मेनी ऑफ द बैंड्स अर्ली हिट singles alongside Robert Lamb and Peter Cetera. He has been praised by his bandmates and other musicians for his guitar skills and his Ray Charles-influenced vocal style. Jimi Hendrix cited Terry Kath as one of his favorite guitarists and considered Kath to be the best guitarist in the universe. Here's
आज पुण्यतिथि है क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन की। इनका जन्म 13 अगस्त 1887 को जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ था। नरेंद्र मोहन सेन ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे। बचपन में इन्हें विख्यात क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के नेता पुलिन बिहारी दास के घर पर पढ़ने का अवसर मिला और यहीं से उनके अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। ढाका मेडिकल स्कूल में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई छोड़कर वे क्रांतिकारी अनुशीलन समिति में सम्मिलित हो गए थे। वे अपनी शिक्षा के बीच में ही छोड़कर अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बारिशाल षड्यंत्र केस में नरेंद्र मोहन सेन को गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में 1914 में इन्हें नजर बंद कर दिया गया।
Today is the birth anniversary of Jean Reinhardt, known by his nickname Django. He was a Belgian-French jazz guitarist and composer. Since he was born in Belgian soil, he is also often named a Belgian musician. He was one of the first major jazz talents to emerge in Europe and has been hailed as one of its most significant exponents. Here I got rhythm from Django Reinhardt. Album Djangology.
आज पुण्यतिथि है अमियो कुमार दास की। आपका जन्म 1895 असम में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा कोलकाता से पूरी की। कानून की पढ़ाई कर रहे थे कि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर तेजपुर वापस चले गए और आंदोलन को संगठित करने में लग गए। वे भारतीय समाज सेवी, गांधी जी के विचारों के अनुयायी, लेखक और असम के प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे। वे लोकनायक के रूप में भी लोकप्रिय थे।
Joel Andrew Douglas also celebrates his birthday. Is an American film producer. Much of Douglas' work has centered on projects involving his family, including acting as co-producer on The Jewel of the Nile and Romancing the Stone. Here's a number from The Jewel of the Nile.
आज जयंती है अलेक्जेंडर कनिंघम की। उन्हें भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाता है। कनिंघम एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना में अभियांत्रिक पद पर नियुक्त थे। इनके दोनों भाई फ्रांसिस कनिंघम एवं जोसेफ कनिंघम भी अपने योगदानों के लिए ब्रिटिश भारत में प्रसिद्ध हुए थे। 1833 ईस्वी में एक सैनिक शिक्षार्थी के रूप में वे ब्रिटेन से भारत आए थे। सैनिक इंजीनियर बनकर युद्धों में भाग लिया तथा बाद में बर्मा और पश्चिमोत्तर प्रांत के वे मुख्य अभियंता रहे। वर्ष 1861 ईस्वी में सेवानिवृत्त होने पर वे पुरातत्व के काम में लग गए तथा अपने अध्ययन के आधार पर मृदा शास्त्र के अधिकारी विद्वान माने जाने लगे।
Rekha Bhardwaj is an Indian singer and live performer. She has received 2 Filmfare and 1 National Awards. In addition to Hindi, she has sung in Bengali, Marathi, Punjabi and Malayalam. Here's Milia Milia song by Rekha Bhardwaj from the movie Happy Ending.
आज भारतीय क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र भाई का जन्म दिवस है। उनका जन्म 23 जनवरी 1809 को हुआ था। वे 16वीं शताब्दी में चौहान वंश के संबलपुर के महाराजा मधुकर साई के वंशज थे। वीर सुरेंद्र साई ने 1857 के विद्रोह से पहले ही विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और विद्रोह के थम जाने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। उन्होंने संबलपुर में लगभग 1500 क्रांतिकारियों की एक लड़ाकू सेना तैयार की थी। उन्होंने 1857 से 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया किंतु उन्हें रोक नहीं पाए।
मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा।
Sandeepan Das is an Indian tabla player and composer currently based in Boston. He was 3 times the national drumming champion. At the time, he was also the youngest drummer to be graded by Akashvani. His collaboration with Yo-Yo Ma for the Silk Road Ensemble, Sing Me Home, won the Grammy Award for Best World Music Album at the 59th Grammy Awards 2017. Here's Sandeepan Das, Srishti, the Silk Road Ensemble.
आज जन्म दिवस है निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी का। हिंदी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता हैं वे। उन्हें विशेष रूप से शोले में निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसे भारत में अब तक बनी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।
तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो।
अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे।
तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया
पार्टनर, अब बोल ही दिया तो देख ले।
डाकू, क्यों थानेदार साहब बहादुरी अपनी है? अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। लेकिन भागने की कोशिश मत।
दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से।
लोगों को आते हैं तो नजर हमारी।
अब समय है आपसे विदा लेने का। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin. Have a superb day. Namaskar. Namaskar.